दुनिया का कोई भी मंच हो, दिल्ली का सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम, लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल या फ्रैंकफर्ट का मोत्सार्ट हॉल या सिडनी का ओपेरा हाउस, उस्ताद अमजद अली खान ने अपने सरोद वादन से पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों को न सिर्फ मंत्रमुग्ध किया है बल्कि उन्हें खड़े होकर दाद देने या अंग्रेजी में कहें स्टैंडिंग ओवेशन के लिए मजबूर किया है। अपने घराने और अपने पिता की तारीफ में तो हर कोई लिखता है, लेकिन भारतीय संगीत के इन चुनिंदा नगीनों पर शायद ही किसी उस्ताद की नज़र गई है, और शायद यही वजह है कि किताब का नाम रखा गया है मास्टर ऑन मास्टर्स। कसूर में जन्मे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को अमजद ने बहुत छुटपन से देखना शुरू किया था। जमजमा सरगम, स्थाई अंतरा और चौथ की तान के लिए मशहूर बड़े गुलाम अली खां अमजद के वालिद हाफिज अली खां को भाई साहब कहकर पुकारते थे। डील डॉल में लंबे चौड़े बड़े गुलाम अली खां ने मुगले आजम फिल्म में गाया भी था, और उस समय जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को हर गाने के लिए 500 रुपये मिला करते थे, बड़े गुलाम अली खां ने 25,000 रुपये की मांग की थी और के आसिफ इसके लिए तुरंत राजी भी हो गए थे। अमजद अली खां बताते हैं,
वो बहुत तंदुरुस्त और लईम शईम थे, बल्कि एक दफ़ा जब बहुत शुरू में मुझे मिले थे तो मुझे खुद ही उन्होंने वो किस्सा सुनाया, कहने भाई जब भाई साहब पाकिस्तान आए थे, बिफोर पार्टीशन की बात है, तो कहने मैं भाई साहब को मिलने गया होटल में, और कहने भाई साहब मुझे देख के डर गए क्योंकि मूछें थी और बड़े पहलवान किस्म के लगते थे। वो खुद ही अपनी ज़बान से कहने लगे। मैंने उनको कहा कि मैं ग़ुलाम अली हूँ, और तो अब्बा ने बहुत उनको इज्जत करी, प्यार करा, कहते मैं भाई साहब बगैर सुने हुए नहीं जाऊँगा, मैं दो सरोद आपका दो चार ताने ज़रूर मुझे सुननी है। तो अब्बा ने उनके लिए बजाया। जब कोई उनको इनवाइट करता था तो वो ये कहते थे भाई मैं होटल में नहीं ठहरूंगा, मुझे एक घर चाहिए खाली जहां मैं अपनी कुकिंग खुद करूंगा।
अच्छा।
ट्रेन में उनके साथ एक असली घी का टिन चलता था, वो प्योर घी, उसके बगैर खाना उनको पसंद ही नहीं था। इलाहाबाद में एक दफ़ा मैं छोटा था काफ़ी, 1961 या 60 होगा, वो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था प्रयाग संगीत समिति, तो खान साहब को घर बहुत बड़ा घर दिया, किचन दिया, और वहाँ मुझे उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ खाना खाना। मैंने कहा जी। तब उन अपनी औलाद को ढूंढ रहे थे, भाई मुनव्वर कहाँ हैं, देखो अब सब लोग ढूंढ रहे हैं मुनव्वर, कहे मुनव्वर मिल नहीं रहे, कहने देखो बावर्ची खाने में होगा शायद वो। तो उन्होंने वो खाना बनाने की ट्रेनिंग अपनी औलाद को भी, मुनव्वर अली खान साहब को भी दे दी थी, तो वो किचन में ही पाए गए। मुर्ग मुसल्लम बन रहा था, कहीं कुछ भी, बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डिस्कनेक्टेड रहते हैं ऑडियंस से, और उनको ये नहीं पता लगता कि कब ख़त्म करना है, यानी ओवरडोज हो जाता है, हैवी डोज हो जाता है। लेकिन खान साहब का ये था कि वो ही न्यू कहाँ ख़त्म करना है, वो ख्याल हो या ठुमरी हो या दादरा हो, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एंड कब करना है। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कंसाइजनेस, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये सारे अल्फाज जो है।
अमजद साहब के इन 12 रत्नों में बेगम अख्तर का नाम भी आता है, जिनके बारे में वो कहते हैं कि जब वो गाया करती थीं तो उनकी 1.5 कैरेट की हीरे की नाक की कील उनके चेहरों पर नूर बरपा कर देती थी। स्टेज के कायदों और सलीकों में भी बेगम अख्तर की बराबरी करने वाले बहुत कम लोग थे।
बचपन में जब भी मेरी अब्बा के साथ मैं जाता था इधर उधर, तो वो भी होती थी, तो इससे पहले कि मैं उनको आदाब करूं, वो मुझे आदाब खान साहब, तो मुझे लगता था ये आई यूज़ टू फील एम्बेरस के शायद मेरा मजाक करती हैं या मजाक उड़ाती हैं, लेकिन वो सिलसिला चलता ही रहा। शी वॉज़ वेरी केयरफुल अबाउट दिस ब्यूटिफुल ग्रेसफुल एटिकेट। कश्मीर में एक दफ़ा ऑल इंडिया रेडियो जो कश्मीर था, उसने बेगम साहब को बुलाया और मुझे भी बुलाया। मैंने कहा बेगम साहब मैं शुरू करूँगा। अरे नहीं नहीं मेरी तौबा, मैं आपके बाद कान पकड़ के, उन्होंने बड़े ये बेअदबी, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा जी मैं तो बच्चा हूँ, आपका औलाद हूँ, और आप अगर गा देंगी तो यहाँ मुझे कौन सुनेगा बैठ के। कहते नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता। वो इसी क्या होता है कि हमारी फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमिलिटी का ड्रामा करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा गुलाम हूँ जी, ताबेदार हूँ जी, दे डोंट मीन एनीथिंग, बट शी मेंट एवरी वर्ड। रेडियो के लोग आ गए कि चलिए साहब टाइम हो गया, 6:30 बजे शुरू करना था। तो मैं दौड़ के जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया पीछे से और खुद दौड़ने की कोशिश करी उन्होंने, एंड शी सक्सीडेड। वो एकदम हाथ छुड़ा के स्टेज पे चली गई और मैं विंग में खड़ा हुआ हूँ। वहाँ से बहुत खूबसूरत स्माइल थी उनकी, वहाँ से हंस रही हैं, पर कर्टन खुलवा दिया कि अब तो आगे आ ही नहीं सकते। और उन्हें बैठ के, उस ज़माने के बहुत बड़े मशहूर सरंगी वाले उस्ताद शकूर खान साहब थे और उस्ताद रमज़ान खान तबला बजाते थे, तो वो गाना शुरू कर दिया उन्होंने, 4 गज़लें। और मैं स्टेज के पीछे खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि मालिक मेरी इज्जत तेरे हाथ है। और जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो इंटरवल हो गया, तो लोग पीछे आए मिलने के लिए, गवर्नर भी आया पीछे। तो भगवान साहेब साहब को मैंने कहा कि साहब वो क्या ऑडियंस है कुछ हॉल के अंदर? कहते नहीं, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब कर्टन खुला तो देखा बेगम साहब सामने बैठी हूँ ऑडियंस के अंदर। क्योंकि ऐसा आजकल ऐसा होता है कि हर आर्टिस्ट अपना अपना गा के बजा कर चला जाता है, बिकॉज ही इज़ टायर्ड, ही वॉन्ट्स टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए निकल जाता है। तो अब वो ऑडियंस में बैठी हैं, तो दिस वाज द हाइट ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। मैं तो उनके इस प्यार मोहब्बत से, एहतराम से दबा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने हाउ टू पे हर बैक, तो मैं सरोद रख दिया। मैंने कहा बेगम साहब आज आपने जो गाना गाया है मैं सब राग रागनी भूल गया हूँ और आप थक गई होंगी, जाके आराम करिए। कहने लीजिए, क्या हम आपको सुन नहीं सकते? आप बिस्मिल्लाह करिए, शुरू करिए।
भारतीय संगीत को विश्व मंच पर स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता था तो वो थे रविशंकर। एक बार अमजद साहब के घर पर रविशंकर ने सरोद और अमजद ने सितार बजाया था।
वो हमें अपना गुरु भाई समझते थे, क्योंकि उनके उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब और वो ससुर भी थे उनके, और मेरे वालिद साहब उस्ताद हाफिज अली खान साहब, इन दोनों ने एक ज़माने में एक ही गुरु से सीखा। जब से सुकन्या जी उनकी लाइफ में आई तो हमारे साथ रिश्ता ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले भी हम लोग मिलते थे और कॉन्सर्ट्स में, फेस्टिवल्स में हम भी उनके घर गए खाना खाने के लिए, वो भी हमारे घर आए। और हमारी वाइफ का, क्योंकि मेरी वाइफ सुबलक्ष्मी बहुत बड़ी गुरु की शागिर्द, रुक्मणी अरुडेल की शागिर्द और बहुत अच्छा भरतनाट्यम, तो सुकन्या जी उनकी बड़ी भारी एडमायरर थी, क्योंकि सुकन्या जी ने भी भरतनाट्यम सीखा हुआ था। तो वो हमारे घर जब आए थे तो पंडित जी ने उस दिन, उनका ऐसा मूड आया कि भाई सरोद बजाएंगे हम, तो सितार मैंने पकड़ लिया फिर, तो थोड़ा बहुत हम लोग बजाए। तो ही वॉज ए मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड पर्सन।
रविशंकर और विलायत खां की आपसी प्रतिद्वंदिता काफी मशहूर थी। एक बार BBC से बात करते हुए रविशंकर ने कहा था,
मैं तो सबसे निकृष्ट हूँ, हमसे बहुत अच्छे अच्छे सितार वादक हैं, ये जिनको मैं कभी ये बोलने का चेष्टा भी नहीं किया कि मैं कितना अच्छा हूँ। अभी जो कुछ मैं सीखा बाबा अलाउद्दीन खां से, वो हमारे गुरु थे, सैनिया बीनकार घराना के जो ढंग है वो सीखा, अपना नया सोच से मैं जो कुछ प्रतिष्ठा किया सितार में, जिनको पसंद है वो करते हैं। अब ये तो फालतू बात है, ये टेनिस नहीं है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कोई भी ऐसा कहे कि मैं अच्छा नहीं बजाता हूँ तो वो ठीक है, जैसा भी मैं बजाता हूँ, मेरा लोग जैसा पसंद करते हैं वही मैं बड़ा समझता हूँ।
अमजद अली खां और भीमसेन जोशी ने कई संगीत समारोहों में एक साथ परफॉर्म किया है। अमजद याद करते हैं कि भीमसेन जोशी के बाद बजाना हर एक के बूते की बात नहीं हुआ करती थी।
वो तो बहुत ही मासूम किस्म के इंसान थे, बहुत ही कोमल हृदय के, और बहुत स्ट्रगल उन्होंने करा क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि उनके वालिद जैसे रविशंकर जी के भी वालिद म्यूजिशियन नहीं थे, पंडित भीमसेन जोशी के भी वालिद म्यूजिशियन नहीं थे। तो पंडित भीमसेन जोशी पुणे के बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही तकलीफ़ों से, परेशानियों से वो गुज़रे, और उन्होंने कई गुरुओं से सीखा। लेकिन एक वक्त था ऐसा कि वो ہمارے والد صاحب کے پاس سیکھنے کے لیے گوالیر آ گئے تھے. اور ہمارا جو اینسیسٹرل ہاؤس ہے جہاں میں پیدا ہوا, میرے والد صاحب پیدا ہوئے, اس کو آج کل میوزیم بن گیا ہے, سرود گھر کہتے ہیں. سرود گھر کے باہر ایک فنکشن ہو رہا تھا ہمارا, قریب 10,000 آڈینس بیٹھی ہوئی ہے سامنے. اور کہا کہ یہی میں آتا تھا خان صاحب سے سیکھنے کے لیے, میرے پتا جی سے. اور وہ دو راگ انہوں نے مجھے ایسے سمجھائے کہ میں آج تک ان کو گاتا ہوں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں, پوریا اور ماروا. ایک ہی سروں کے دو راگ ہیں لیکن یہ الگ الگ ان کا کیریکٹر انہوں نے ہی مجھے سمجھایا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وائف نے ان کو ریکویسٹ کری تھی کہ گھر میں میرے برتھ ڈے پہ ایک دن وہ گائیں. تو دیٹ واز مائی 49th برتھ ڈے, پورا پریوار ان کا آیا, ان کی وائف, ان کی بیٹی, بچے سب. تو وہ ایسا اچھا انہوں نے شدھ کلیان گایا اور پھر ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا. تو ایک پاروارک ایک ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے پریوار کے ایک سدس ہیں, ہمارے بڑے بھائی.
جو بھجے ہری کو صدا سوہی پرم پج پاوے گا, سوہی پرم پج پاوے گا, سوہی پرم پج پاوے
گا. کمار گندھرو کے لیے بھی امجد علی خان کے من میں بہت سمان ہے. بچپن میں ان کو تپیدک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا ایک پھیپڑا پوری طرح سے نشٹ ہو گیا تھا. اس کے باوجود کمار گندھرو کے گائن نے اتکرشتتا کی بلندیوں کو چھوا.
یہ دو شخص, پنڈت بھیم سین جوشی اور پنڈت کمار گندھرو, یہ ووکل میوزک کا ایک فیس بن گئے تھے پورے ہمارے دیش میں. دیواس میں رہتے تھے اور ایک دفعہ میں, میری وائف, میری والدہ بھی تھیں ساتھ میں, ہم لوگ بائی روڈ جا رہے تھے تو اچانک آئی ریئلائز کہ بھائی یہ تو دیواس ہے, آئی تھنک اندور ٹو بھوپال ایسا کچھ تھا راستہ. تو یہاں تو کمار جی رہتے ہیں, چلیے ان کے گھر جاتے ہیں. تو شاید آفٹر نون کا وقت تھا وہ, اور ہم لوگ پہنچ گئے ان کے گھر. یہی پرانا ہمارا کلچر تھا دیش کا, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لی جاتی تھی. جب دل چاہتا تھا آپ کسی کے گھر پہنچ جاتے تھے. ان کی وائف کچھ کام کر رہی تھیں, اچانک انہوں نے دیکھ لیا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کمار جی کے ساتھ آئے, دونوں آئے. پھر ان کے گھر میں ایک بالکل, اٹ واز آلموسٹ لائک اے گارڈن ہاؤس, اور ایک جھولا, کئی بامبے کے گھروں میں, گجرات کے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں جھولا کا ایک رواج ہے. وہ جھولے پہ آ کے بیٹھ گئے اور ہم لوگ کافی دیر بات چیت کرے. تو وہ ایک الگ ہی راستہ گانے کا دکھا گئے.
استاد ولایت خان نے 8 سال کی عمر میں اپنی پہلی 78 آر پی ایم کی ڈسک ریکارڈ کرائی تھی. افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ ان سے اتنے پربھاوت ہوئے تھے کہ انہوں نے 1964 میں انہیں ایک مرسیڈیز بینز کار اپہار میں دی تھی. ولایت خان صاحب کو تاش کھیلنے, پشچمی کپڑے پہننے اور بال روم ڈانسنگ کا بہت شوق تھا.
کئی دفعہ مجھے ایز اے ینگسٹر ان کے ستار سے ایسا لگتا تھا کہ از اٹ ہیومنلی پاسبل, کہ کیا کوئی انسان ایسا ستار بجا سکتا ہے. یعنی اسپیڈ اور ٹیکنالوجی, اور ایک ان کا جو سب سے زیادہ جو بڑا کنٹریبیوشن ہے, ٹونل کوالٹی. ایک ستار میں اب دو ہی آدمی کا آپ نام ہمیشہ سنیں گے کہ سم بڈی از فالوئنگ روی شنکر جی, سم بڈی از فالوئنگ ولایت خان صاحب. ایک دن میں بجا رہا تھا تو ولایت خان صاحب آڈینس میں تھے, اور دوسرے دن جب وہ بجا رہے تھے تو میں بھی آڈینس میں تھا, اور ہم دونوں کے ساتھ ایک ہی طبلہ وادک پنڈت کشن مہاراج طبلہ بجا رہے تھے. تو میں راگ شری بجایا تھا. دوسرے دن خان صاحب پیلو بجا رہے تھے, ٹورڈز دا اینڈ وہ شری بجانے لگے کیونکہ میں راگ شری بجایا تھا. اور میری طرف انہوں نے دیکھا, امجد بھائی معاف کرنا, کل کا شری تمہارا میرے دماغ میں گھوم رہا ہے اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے شری بجانے کا. تو وہ شری بجانے لگے. پھر شاہ شجاعت نے ان کے کان میں کچھ کہا, دین ہی کیم بیک ٹو پیلو. تو دس واز دا گریٹسٹ بلیسنگس اینڈ آنر واٹ ہی گیو. ایسا بھی کبھی ہوتا نہیں.
اس کتاب میں اس طرح کے 12 سنگیت دگجوں کا ذکر ہے جن سے امجد علی خان کے ذاتی سمبند رہے ہیں. یہ وہ 12 لوگ ہیں इनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत पूरी दुनिया में पहुंचा और सराहा गया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।